मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष, सिंध पर अरबों का आक्रमण अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। द अरब इन्वेशन ऑफ सिंध। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में एक बार पुनः राजनीतिक एकता नष्ट हो गई। विभिन्न क्षेत्रों में नई राजनीतिक शक्तियों का उत्कर्ष हुआ। कन्नौज में यशोवर्मन 725 से 753 ईस्वी सबसे शक्तिशाली शासक बना। वाकपति राज के गौड़वाहों से उसके संबंध में जानकारी मिलती है। मगध में उत्तर गुप्त शासकों ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया। तीर भुक्ति पर चीनी आक्रमण हुए। हर्षोत्तर काल से ही गुर्जर प्रतिहारों, पालों, राष्ट्रकूटों, कश्मीर के ललितादित्य, अफगानिस्तान और पंजाब के शाही वंश का उदय हुआ। इसी समय पश्चिमी भारत में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण के दूरगामी परिणाम निकले। अरबों का आक्रमण, द अरब इन्वेशन। पश्चिमी भारत में सिंध एक शक्तिशाली राज्य था। 7वीं शताब्दी में ही संभवतः हर्षवर्धन ने सिंध पर आक्रमण किया था। वेनसांग के अनुसार 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ शूद्र जाति के एक बौद्ध राजा ने अपना शासन स्थापित किया। चचनामा के अनुसार दाहिर के पूर्व सिंध पर राय वंश का अधिकार था। इसी वंश का राय शाहसी द्वितीय हुआ, परंतु कुछ दिनों पश्चात उसके ब्राह्मण मंत्री चच ने स्वयं ही राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र दाहिर के राज्यकाल में 712 ईस्वी में अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर इस पर विजय प्राप्त की। कतिपय राजपूत अभिलेखों, बिलादुड़ी के पुस्तक किताब फुतुह अल बल्दान एवं फारसी ग्रंथ चचनामा से अरब आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। अरबों के आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ द अरब इन्वेशन। सिंध पर अरब आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो चुकी थी। भारत और अरब वालों में व्यापारिक संबंध बहुत पहले से इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व ही स्थापित हो चुके थे। अनेक अरब व्यापारी भारत के पश्चिम समुद्र तट पर अस्थायी रूप से बस गए थे। इन्हें स्थानीय शासकों एवं जनता की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त था। अरब व्यापारियों को व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। वे थाना, देवल, खम्भात, सोपारा और मालाबार के बंदरगाहों से व्यापार करते थे। 6वीं-7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय और इसके तीव्र प्रसार ने अरबों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला दिया। हजरत मोहम्मद के देहावसान के 1 शताब्दी के अंदर ही इस्लाम धर्म का प्रसार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े भूभाग पर हो गया। अरबवासी भी इस्लाम के प्रचार में दिलचस्पी लेने लगे। भारत उस समय मूर्ति पूजकों के देश के रूप में विख्यात था। अतः भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रचार एवं मूर्ति पूजा को समाप्त करना अरबों का एक परम उत्तरदायित्व बन गया। यह कार्य बिना सैनिक शक्ति के संभव नहीं था। धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त भारत से धन प्राप्त करने की लालसा भी अरबों में थी। उस समय भारत का वैभव विख्यात था। मंदिरों में अकूत संपत्ति एकत्र थी। इन्हें लूटने से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ धार्मिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती। एक बात और थी, सिंध में अपना राज्य स्थापित कर अरबों को भारत के भीतरी भाग में भी धर्म प्रचार का मौका मिलता। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी योजना के तहत सिंध विजय की योजना बनाई। सिंध की आंतरिक राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने अरबों के हौसले को और अधिक बढ़ाया। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर हजरत मोहम्मद के इंतकाल के कुछ वर्षों बाद ही खलीफा उमर के समय में अरबों ने बम्बई के निकट थाना पर आक्रमण किया और भड़ौच और देवल तक धावा मारा, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अरबों का दूसरा आक्रमण देवल के बंदरगाह पर हुआ। इसमें भी अरब विफल रहे। इस आक्रमण में अरब सेनापति मारा गया। इस पराजय ने कुछ समय के लिए अरबों के हौसले पस्त कर दिए। समुद्र मार्ग से विफल होकर अरबों ने अब स्थल मार्ग से सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। खैबर बोलंदरों से काबुल जाबुल राज्यों की सतर्कता तथा किक्कान के निवासियों के विरोध के कारण अरब आगे नहीं बढ़ सके। अब उनके समक्ष सिंधु पहुँचने का एकमात्र रास्ता मकरान था। अरब मकरान और सिस्तान पर अधिकार करने में सफल हुए और इसी मार्ग से उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की। अरबों के सिंध पर आक्रमण का तत्कालीन कारण देवल के निकट कुछ जहाजों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना था। कहा जाता है कि लंका का राजा जहाज द्वारा कुछ मुसलमान स्त्रियों को धन संपत्ति के साथ इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेज रहा था। इस जहाज को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। हज्जाज इस घटना से बुरी तरह क्रुद्ध हो उठा। उसने सिंध के शासक दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की, परंतु दाहिर ने यह कहकर हज्जाज की मांग टुकरा दी कि समुद्री डाकुओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। दाहिर के इस उत्तर से हज्जाज अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने खलीफा वालिद की अनुमति प्राप्त कर देवल पर आक्रमण की योजना बनाई। दोनों ही बार अरबों को पराजित होना पड़ा एवं इन अभियानों के नेता उबैदुल्ला और बुंदेल भी युद्ध में मारे गए। क्रुद्ध होकर हज्जाज ने 712 ईस्वी में अपने भतीजे और दामाद मुहम्मद बिन कासिम को पूरी तैयारी के साथ सिंध पर आक्रमण करने को भेजा। कासिम इस अभियान में सफल हुआ। अरबों के आक्रमण का स्वरूप। नेचर ऑफ द इन्वेशन ऑफ अरेबियंस। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उसकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। उसने एक सुसज्जित सेना के साथ, जिसमें खलीफा द्वारा भेजे गए 6,000 सीरियाई सिपाही भी थे, सिराज से सिंध के लिए प्रस्थान किया। मकरान होता हुआ वह थट्टा के नज़दीक देवल बंदरगाह पहुंचा। कासिम के आगमन की खबर सुनकर भी दाहिर ने देवल की सुरक्षा का पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। उसने भयभीत होकर अथवा सामरिक दृष्टिकोण से सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों को छोड़ दिया और पूर्वी किनारे पर युद्ध की तैयारी की। अतः कासिम ने नगर पर आसानी से अधिकार कर लिया। चचनामा के अनुसार एक ब्राह्मण की सहायता से कासिम ने देवल के मंदिर में लगे लाल झंडे को गिरवा दिया, जिससे नगरवासी भयभीत होते। उनका आक्रमणकारियों का मुकाबला करने का हौसला पस्त पड़ गया। कासिम ने जी भरकर नगर को लूटा तथा अनेक नगरवासियों की हत्या करवाई। देवल में एक मस्जिद का निर्माण किया गया तथा 4,000 मुसलमानों को नगर की सुरक्षा के लिए वहां बसाया गया। लूट में कासिम को बहुत अधिक धन मिला। लूट के माल का 1/5 भाग तथा 75 स्त्रियां हज्जाज की सेवा के लिए भेज दी गई। शेष धन सैनिकों में बांट दिया गया। अनेक स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना दिया गया। देवल से कासिम नेरून पहुंचा तथा बौद्धों की सहायता से उसने इस नगर पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार उसने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के सिविस्तान या सहवान पर भी अधिकार कर लिया। इस कार्य में अनेक भारतीयों ने भी कासिम की मदद की। अब सिंधु नदी की मुख्य धारा मेहरान को पार कर ब्राह्मणवाद के किले की तरफ बढ़ा। दाहिर को भी बाध्य होकर किला छोड़कर कासिम का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। 20 जून 712 को राओर के निकट दाहिर एवं कासिम की मुठभेड़ हुई। यह एक भयंकर युद्ध था। चचनामा के अनुसार दाहिर ने कासिम के छक्के छुड़ा दिए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई, परंतु इसी समय हाथी पर बैठे हुए दाहिर को एक तीर आ लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इससे दाहिर की सेना के पांव उखड़ गए। विधवा रानी के जिम्मे रावर का किला छोड़कर दाहिर का पुत्र जयसिंह ब्राह्मणाबाद की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ गया। दाहिर की विधवा रानी ने रावर के किले की सुरक्षा का भरपूर प्रयास किया, परंतु विफल होकर उसे अपने सहयोगियों के साथ जौहर व्रत का पालन करना पड़ा। रावर पर अधिकार कर कासिम ब्राह्मणाबाद की तरफ बढ़ा। जयसिंह ने वीरतापूर्वक कासिम का सामना किया, लेकिन उसके मंत्री ने विश्वासघात कर आक्रमणकारी का साथ दिया। फलतः जयसिंह की पराजय हुई। कासिम ने किले पर अधिकार कर लिया। उसने जयसिंह को भागने पर मजबूर किया। दाहिर की एक विधवा से स्वयं विवाह कर लिया तथा उसकी दो पुत्रियों सूर्या देवी एवं परमाल देवी को हज्जाज के पास नजराने के तौर पर भेज दिया। ब्राह्मणाबाद से कासिम दाहिर की राजधानी आलोर गया तथा उस पर अधिकार कर लिया। उसका अगला निशाना मुल्तान बना। 2 माह के कड़े संघर्ष के पश्चात ही वह मुल्तान पर अधिकार कायम कर सका। मुल्तान की विजय कासिम की अंतिम विजय थी। कासिम कन्नौज आक्रमण की योजना बना ही रहा था कि नए खलीफा सुलेमान ने उसको 713 ईस्वी में वापस बुला लिया। दाहिर की असफलता के कारण। आक्रमणकारियों का सामना करने में दाहिर की विफलता और अरबों की सफलता के अनेक कारण थे। बहुत हद तक दाहिर अपनी पराजय के लिए स्वयं उत्तरदायी था। दाहिर ने अरब आक्रमणकारियों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। इसी कारण जिस समय कासिम ने देवल पर आक्रमण किया उसी समय उसके जलबेड़े की सहायता से कासिम को पहुंचाने वाली सैनिक सहायता को तो रोकने का प्रयास नहीं किया। देवल के पश्चात भी जब तक कासिम ब्राह्मणाबाद के निकट नहीं पहुंच गया उसने उसे रोकने का विशेष प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने कासिम को सिंधु नदी भी आसानी से पार करने दी। उसकी यह भूल उसके लिए महंगी साबित हुई। दाहिर की सैनिक शक्ति भी दुर्बल थी। उसके अधिकांश सिपाही और सेनानायक अनुभवहीन थे और उसमें योग्यता का अभाव था, जबकि कासिम की सेना कुशल एवं दक्ष थी। कासिम ने अपनी सेना का संचालन भी सुचारू रूप से किया, जो दाहिर नहीं कर सका। दूसरी बात यह थी कि कासिम को अपने सहयोगियों का जितना समर्थन प्राप्त था उतना दाहिर को नहीं। अरबों के समक्ष इस्लाम धर्म से भी अधिक प्रेरक तत्व था धन प्राप्त करने की लालसा, इसलिए वे पूरे जी जान से लड़े। परंतु दाहिर को तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण सबका समर्थन नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, दाहिर के मंत्रियों प्रांतपतियों एवं उसके राज्य की जनता ने भी अनेक मौक़ों पर अरबों को ही सहायता की। वस्तुतः अरबों की सिंध विजय का श्रेय बहुत हद तक देशद्रोही भारतीयों को दिया जा सकता है, न कि अरबों की श्रेष्ठ सैनिक क्षमता को। अरबों की सिंध विजय के परिणाम। सिंध पर अरब आक्रमणकारियों की विजय भारतीय इतिहास की एक विशेष घटना है। अरबों के सिंध विजय के परिणामों के विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। इतिहासकार लेन पुल के विचार में सिंध की विजय भारत और इस्लाम के इतिहास में घटना मात्र थी, परिणाम विहीन विजय मात्र थी। वुलजे हेग ने भी इस घटना को प्रसंग मात्र माना है। आस्ती मजुमदार इसे एक महत्वहीन परिणाम वाली घटना मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार सिंध की अरब विजय का कोई अस्थायी परिणाम नहीं निकला। कुछ दूसरे विद्वानों की धारणा है कि अरब आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत दहल गया। वास्तविकता यह है कि अरब आक्रमण ना तो उतना महत्वहीन था जैसा कुछ विद्वानों ने प्रमाणित करने का प्रयास किया, और ना ही उतना महत्वपूर्ण जितना कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं। अरब आक्रमण के परिणाम बहुत कुछ भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमणों के समान ही हुए। राजनीतिक दृष्टिकोण से अरबों की सिंध विजय अस्थायी सिद्ध हुई। अरबवासी सिर्फ सिंध पर ही अधिकार कर सके, सिंध से आगे बढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिल सका। यद्यपि अरबों ने सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास किया, तथापि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। अरबों ने सिंध प्रदेश के प्रशासन के लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं की। इसका प्रशासन वे भारतीयों की सहायता से करने लगे। इस प्रकार अरबों ने जैसी सफलता एशिया, अफ्रीका या यूरोप के विभिन्न भागों में प्राप्त की, वैसी सफलता उन्हें सिंध में नहीं मिल सकी। इसलिए आरसी मजुमदार इसे महत्वहीन परिणाम वाली घटना मानते हैं। फिर भी यह तथ्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अरबों की विजय महत्वहीन या परिणाम विहीन नहीं थी। एक विद्वान के अनुसार अरबों ने एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत की जिसका सामना करने के लिए विभिन्न शक्तियां उदित हुई, जो भारत में आगामी 300 वर्षों तक बनी रही। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों की प्रतिष्ठा की स्थापना उनके द्वारा अरबों का विरोध करने के कारण हुई। दीर्घकालिक दृष्टि से भी अरबों ने राजनीतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण नीति का प्रचलन किया। उन्होंने इस्लाम धर्म और इस्लामी राज्य के बीच अंतर रखा। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह ने धर्मपंथियों पर जो अंकुश लगाए थे और राज्य के मामले में उनके हस्तक्षेप पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उस नीति के बीज अरबों के उपर्युक्त दृष्टिकोण में दिखाई देते हैं। अरबों की विजय ने तुर्की विजय की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। सिंध विजय के सांस्कृतिक परिणाम भी महत्वपूर्ण हुए। आरंभ में अरबों ने सिंध में धार्मिक उन्माद दिखाया, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने को बाध्य किया, गैर इस्लामियों की हत्याएं करवाई तथा उन्हें गुलाम बनाया। परंतु सिंध में बस जाने के पश्चात उनका यह धार्मिक जोश ठंडा पड़ गया। तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। मंदिरों को तोड़ना बंद हो गया, जैसे मुल्तान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नहीं तोड़ा गया। हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद सौंपे गए, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई। सिर्फ इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने वालों से जजिया वसूला गया। उनकी इस नीति से भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना सहज ही हो गई। अरबों ने भारतीयों से सामाजिक संपर्क स्थापित किया तथा व्यवहारिक संबंध भी बनाए। इससे अरब तथा भारतीय और नजदीक आए। भारतीय मुसलमानों का एक नया वर्ग पहली बार इसी समय उभरा। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का यह विचार कि सांप्रदायिक मतभेद एवं भारत के विभाजन के नींव सिंध विजय के फलस्वरूप पड़ी, नितांत सांप्रदायिक एवं असंगत है। इसके विपरीत अरबों से संपर्क के कारण दोनों देशों के संबंध निकट हुए तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए। यद्यपि भारतीय इस सांस्कृतिक संपर्क से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं उठा सके, तथापि अरबों के सहयोग से भारतीय व्यापारी पश्चिमी जगत, विशेषतया अफ्रीका में अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ बनाए रख सके। सिंध अब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। अरबों ने भारत से अनेक नई बातें ग्रहण की तथा उनका प्रचार यूरोप में भी किया। भारतीय कला, धर्म, दर्शन और ज्ञान विज्ञान ने अरबों को अत्यधिक प्रभावित किया। प्रसिद्ध विद्वान हेवेल के अनुसार यह भारत था, यूनान नहीं, जिसने इस्लाम को उसकी युवावस्था में शिक्षा दी, उसके दर्शन और रहस्यवादी विचारों का निर्माण किया तथा साहित्य, कला एवं स्थापत्य में इसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति को अनुप्रमाणित किया। सिंध विजय के पश्चात अनेक अरब विद्वान यहाँ आए और यहाँ के अनेक ग्रंथों को अपने साथ ले जाकर फारसी में उनका अनुवाद निकाला। खलीफा मंसूर के समय में भारत से ब्रह्मगुप्त लिखित ब्रह्म सिद्धांत तथा खंडन खाद्य ले आकर अरबों ने भारतीय विद्वानों की सहायता से उनका अरबी में अनुवाद कराया। इसी प्रकार पंचतंत्र को भी अनुदित किया गया। ऐसा माना जाता है कि सूफी संप्रदाय भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। निकल्सन के अनुराग के अनुसार सूफी धर्म के अनेक सिद्धांत, जैसे सूफियों का संतवाद, माला धारण करने का ढंग, फना का सिद्धांत और उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं संबंधी भारतीय दर्शन और विश्वासों, विशेषतः बौद्ध विश्वासों से प्रभावित थे। चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष, रसायन और गणित का ज्ञान भी अरबों ने भारत से सीखा। अलबेरूनी के अनुसार अरबों द्वारा प्रयुक्त संख्याओं के चिन्ह हिंदू चिन्हों के सर्वसुंदर स्वरूपों से निकले थे। आमिर खुसरो भी अबू मसर नामक अरब सिद्धांत ज्योतिषी पर भारतीय प्रभाव का उल्लेख करता है। अरबों ने शून्य का ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया। अरबों की चित्रकला, संगीत एवं स्थापत्य कला के विकास में भी भारतीयों का योगदान रहा। अतः अरबों की सिंध विजय परिणाम विहीन विजय मात्र नहीं थी, जैसा कि लेनपुल महोदय सुझाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हुए भी अरबों की सिंध विजय के दूरगामी परिणाम निकले। वी एस पाठक के शब्दों में, जीवन, विज्ञान और धर्म के अनेक क्षेत्रों में सिंध में अरब अधिकारियों के साथ एक ऐसे युग का सूत्रपात हुआ जिसे हिंदू मुसलमान संस्कृतियों के भविष्य में होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की पूर्व पीठिका कहना अनुपयुक्त न होगा। अरबों से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद अरब्स। 8वीं शताब्दी में सिंध, मुल्तान और पंजाब के कुछ भागों पर अरबों का राजनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ। अल मंसूरा सिंध में अरबों की राजधानी बनी। अरब विजय के परिणाम स्वरूप मुल्तान और सिंध में अरब स्थायी रूप से बस गए। धीरे धीरे अरबों का अपना प्रभाव क्षेत्र सिंधु की निचली उपत्यका में मुल्तान से अल मंसूरा और देवल तक विस्तृत हो गया। पूर्व में अनेक प्रभाव क्षेत्र की सीमा गुर्जर प्रतिहार राज्य की सीमा तक पहुंच गई। अतः गुर्जरों ने अरब के प्रसार को रोकने का प्रयास किया और इसमें वे सफल भी हुए। अरब लेखकों के अनुसार अरबों ने गुर्जरों अलजुर्जिया गुर्जर को परास्त किया। अल याकूबी का कहना है कि सिंध के गवर्नर जुनैद ने मारवाड़, मंदसौर, मालवा, भड़ौच और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की तथा गुर्जरों को पराजित किया। गुजरात में जुनैद की सेना को चालुक्यों ने परास्त किया। इसी प्रकार पूर्व में प्रतिहारों तथा उत्तर में कारकोटों ने अरबों के प्रसार को रोका। गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने अरबों को मध्य भारत में बढ़ने से रोका। वस्तुतः अरब सिंध और मुल्तान के बाहर अपना व्यापक राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में विफल रहे। यद्यपि अरबों का राजनीतिक प्रभाव सिंध के बाहर नहीं था, तथापि अरब व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से सिंध से बाहर विशेषकर दक्षिण भारत में निवास करने लगे। उन लोगों ने राष्ट्रकूटों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर उनका संरक्षण प्राप्त कर लिया। राष्ट्रकूटों ने उन्हें व्यापार और आवास की सुविधा प्रदान की, इसलिए अरब लेखक राष्ट्रकूटों की प्रशंसा करते हैं। वे राष्ट्रकूटों को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजा मानते हैं तथा बलहार की उपाधि से संबोधित करते हैं। अनेक अरब लेखक जैसे इब्न खुतबिद, सुलेमान अल मसूदी, इब्न हौकल, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय एवं अन्य राजाओं की प्रशंसा करते हैं। राष्ट्रकूटों ने अरबों को न सिर्फ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता भी दी, इसलिए दक्षिण भारत में अरब बड़ी संख्या में निवास करने लगे। अल मसूदी के अनुसार कोंकण में सिराफ, बसड़ा, अमन और बगदाद से आए हुए करीब 10,000 मुसलमान रहते थे। वहाँ का राजा मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख या हजमत को नियुक्त करता था। कोंकण के अतिरिक्त मालाबार, आंध्र, मद्रास, मैसूर, गुजरात, काठियाबाड़ में भी बड़ी संख्या में अरब निवास करते थे। उत्तर और मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहारों के विरोध के कारण अरबी और भारतीय संस्कृति का व्यापक संपर्क नहीं हो सका, परंतु दक्षिण भारत में अरब इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार करने में सफल रहे। व्यापारिक संपर्क, अरब विजय के परिणाम स्वरूप 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हिंद अरब व्यापारिक संपर्कों का सर्वाधिक विकास हुआ। भारतीय अरब व्यापार के विकास का सबसे अधिक विस्तार अब्बासी खिलाफत द्वारा बगदाद की स्थापना के बाद हुआ। बगदाद और अरब सागर में फारस की खाड़ी द्वारा सीधा व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। बसरा अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में विकसित हुई, जहां भारत, चीन, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका और अन्य देशों के से व्यापारिक सामान आते थे और उन्हें अरब साम्राज्य के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। इसी प्रकार फारस की खाड़ी स्थित सिराफ बंदरगाह से भारत, चीन और अन्य पूर्वी देशों को अरब संसार के सामान निर्यात किए जाते थे। हिंद अरब व्यापार के विकास के कारण भारत में अनेक बंदरगाहों की समृद्धि बढ़ी। अरब भूगोलवेत्ता भारत स्थित बंदरगाहों जैसे देवल, काम्बे, भड़ौच, थाना, सिंदापुर, क्विलों, बर्लिन, कंज, समुंदर तथा अल माबर का उल्लेख करते हैं। मस्कट से क्विलों तक सीधा व्यापार होता था। अरब व्यापारियों की गतिविधियों के केंद्र दक्षिणी समुद्र तट थे, परंतु अरब व्यापारी सिंध, पंजाब, बंगाल, असम तथा कश्मीर से भी व्यापारिक संपर्क बनाए हुए थे। गुजरात और काठियावाड़ में भी अरब गतिविधियां बढ़ी। गुजरात में नहलवाड़ अरब व्यापारियों का मुख्य आकर्षण बिंदु था। अरब यात्री सुलेमान और अल मसूदी के अनुसार सिराफ से अरब जहाज रवाना होकर मस्कट होते हुए 2 माह में क्विलों बंदरगाह पहुँचते थे। क्विलों से पाक का मुहाना पार कर जहाज बलिन पहुँचते थे। यहाँ से विभिन्न दिशाओं के लिए समुद्री मार्ग निकलते थे। चीन जाने वाले जहाज अंडमान निकोबार तथा कलाह होते हुए कैंटन जाते थे तथा बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले जहाज कंज और समुंदर होकर गंगा के मुहाने की ओर जाते थे। भारत अरब को मुख्यतः सागौन लकड़ी, कच्चा लोहा, लोहे का बना तलवार, चांदी, हीरा, मोती, गेंडा का सिंह, हाथी दांत, गरम मसाला, सुगंधित पदार्थ, आम, कटहल, नींबू, नारियल, चीनी, हाथी, मयूर, मलमल, सूती वस्त्र, नील रंग, चंदन इत्यादि का निर्यात करता था। अरब भारत को मुख्यतः लोबान, घोड़ा, सोना, मोती, खजूर और निर्मित सामानों का आयात करता था। हिंद अरब व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था, लेकिन 13वीं शताब्दी में अब्बासी खिलाफत के पतन तथा अरब सागर में पुर्तगालियों के प्रभाव से भारतीय अरब व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया। सांस्कृतिक संबंध। अरबों से राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों के विकास के परिणाम स्वरूप हिंद अरब सांस्कृतिक संपर्क बढ़े। अब्बासी खिलाफत के समय बगदाद अरब और भारतीय संस्कृति का मिलन बंधु बन गया। इसी प्रकार भारत में सिंध, मुल्तान, दक्षिणी और पश्चिमी समुद्र तट पर अरब व्यापारिक बस्तियां स्थापित हुई। दोनों संप्रदायों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तथा दोनों ने एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों को अपना लिया। अनेक भारतीय विद्वान, दार्शनिक, चिकित्सक बगदाद गए तथा भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया। अनेक अरब यात्री और भूगोल वेत्ता भी भारत आए, जैसे सुलेमान अल इदरिसी, अल मसूदी, अल बेरूनी इत्यादि। इनके लेखों से तत्कालीन भूगोल, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। बगदाद में उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित हुए, जहाँ भारतीय ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई एवं शोध होता था। भारतीय संपर्क से अरब सबसे अधिक खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रभावित हुए। अल जाफरी ने सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने भी इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख है अबीब अल फाजरी की किताब किताब अल अजीज। अरबी भाषा में संस्कृत के अनेक खगोल संबंध शब्द व्यवहार में लाए गए, जैसे करदज कर्मजय, जीव जीव, बुद्धमास अध्यमास इत्यादि। भारतीय कल्प की धारणा अरबों में बहुत लोकप्रिय हुई। ज्यामिति के क्षेत्र में अरब सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित हुए। अरब भूगोल वेत्ता आर्यभट्ट के सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। भारतीय चिकित्सकों का भी बगदाद में यथेष्ट सम्मान था। अरबों के तुलना में भारतीय अरब संपर्क से कम प्रभावित हुए। अरबों से संपर्क का एक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत में, विशेषतया दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ना। जिस प्रकार इस्लामी सूफीवाद बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय धार्मिक आंदोलन पर भी इस्लाम धर्म के प्रभाव का तर्क अनेक विद्वानों ने दिया है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन के कुछ विशिष्ट गुण, जैसे एकेश्वरवादी उपासना पर बल, भक्ति समर्पण, गुरु भक्ति पर बल की भावना दक्षिण के संतों ने इस्लाम धर्म के प्रभाव से ग्रहण की। इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ साथ इसके विभिन्न संप्रदायों, जैसे सिया कर्मतिया संप्रदायों का विकास हुआ। अरब संपर्क का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि भारत में अरब शिक्षा पद्धति का प्रसार आरंभ हुआ। इस दिशा में गजनी के शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है। लाहौर भारत में अरबी शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया। शिक्षा के साथ साथ अरबी लिपि और भाषा का भी भारत में व्यवहार आरंभ हुआ। अरबी भाषा ने अनेक क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मलयालम और तमिल पर भी अपना प्रभाव डाला। इस प्रकार 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय के तत्कालीन परिणाम यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थे, परंतु इसके दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अध्याय समाप्त।